Pues sí. आयत नंबर 63 से 73 तक, ये सूरत अहज़ाब की आखिरी आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने सबसे पहले कयामत की याद दहानी करवाई है और बताया है कि जो लोग पूछते हैं कि कयामत कब आएगी, तो पैगंबर इसका वक्त नहीं बता सकता। तो उसका वक्त पूछने की बजाय करना क्या चाहिए? उसकी तैयारी करनी चाहिए, गुमराही से निकलकर अल्लाह की अताअत इख्तियार करनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो मुसलमानों को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि इस्लाम जैसे जलीलुल कदर पैगंबर का जिक्र किया कि मूसा अलैहि इस्लाम जो है इनको लोगों ने बहुत सताया। तो क्या करना है कि जिस तरह मूसा अलैहि इस्लाम ने अपनी कौम के रवैयों पर सब्र किया, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अहले ईमान को भी मुनाफिकीन के रवैये पर जो है वो सब्र करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कर ही रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने याद दहानी के तौर पर दोबारा इस बात को रखा है और आखिर में बताया है कि इंसान का अजीम शर्फ क्या है। और वो क्या कि इंसान का अजीम शर्फ ये है कि इंसान जो है वो इमानत, जो कि इंसान को खिलाफत की जिम्मेदारी दी गई है, अल्लाह की अताअत की जिम्मेदारी, तो इंसान जो है उसको याद रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, यस अलू कन्नासु अनिस्सा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवाल करते हैं आपसे कयामत के बारे में। अस्सा जो है ये कयामत का नाम है कि लोग आपसे पूछते हैं कि कयामत की घड़ी कब आएगी, और अक्सर ये मुनाफिक और काफिर मजाक के तौर पर पूछते थे कि कब आएगी वो कयामत जिससे आप हमें डराते हैं। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कहिए कि इसका इल्म अल्लाह ही के पास है। वमा युदरी का, और तू क्या जाने, और आपको क्या खबर, लअल्लस्साअता तकूनु करीबा, कि शायद के कयामत की घड़ी करीब ही आग लगी हो, कि आपको इसका क्या पता, शायद के वो करीब ही आ गई हो। तो यहाँ पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि लोग मजाक के तौर पर ये पूछते हैं और जो है वो कयामत की घड़ी कब आएगी, इसकी सही खबर जो है वो सिर्फ अल्लाह को पता है। और कहा जा रहा है कि तुम्हें क्या खबर कि वो करीबी आ गई हो। इन अल्लाह लअनल काफिरीन व अद्द लहुम सईरा। तो आयत नंबर 64 से लेकर 66 तक, 64 से 66, यहाँ पे काफरों का अंजाम बताया गया है कि वो लोग जो अल्लाह के रसूल की नबूवत का इनकार करते हैं, रिसालत का इनकार करते हैं, जो कयामत का इनकार करते हैं, फिर उनका क्या अंजाम होगा कि इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ने लानल काफिरीना, काफिरों पर लानत की है। लानत के मानी है रहमत से महरूम करना। वअद्दा लहुम सईरा, और इनके लिए भड़कती हुई आग मुहैया कर रखी है। खालिदीन फीहा अबदा, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। अब आप देखें कि तीन बातें यहाँ पे कही गई हैं। पहली चीज, अल्लाह ने काफरों पर लानत की है। नंबर दो, इनके लिए भड़कती हुई आग मुहैया की है, सईरा। नंबर तीन, जो उसके अंदर हमेशा रहेंगे। खालिदीन काफी था, फिर अबदा की कैद आ गई, यानी हमेशा हमेशा रहेंगे। नंबर चार, ला यजिदूना वलीयं वला नसीरा, ना तो वो कोई हामी और मददगार पा सकेंगे। तो वली दोस्त को कहते हैं जो मुश्किल में काम आता है, और नसीरा यानी कहीं से कोई मदद आ जाए तो कुछ भी नहीं होगा। फिर आयत नंबर 66 में फरमाया, यौमा तुकल्लबू वुजूहुम फिन्नार, जिस दिन इनके चेहरे आग पर उलट पलट किए जाएंगे। तुकल्लब का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अब आप देखें कि तकल्लब के मानी होते हैं कि उलटना पलटना, गोश्त को आग पर भूनने के लिए कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ। आप बनाती हैं ये बारबेक्यू बनाती हैं आप देखें कि आप चिकन को और आप जो गोश्त होता है उसको कैसे ऊपर नीचे करती हैं ना, तो और जब आप कर रही होती हैं कैसे उसमें से पानी निकल रहा होता है, कुछ लहू सा उसमें से निकल के बह रहा होता है। तो दोजक की आग में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि मुजरिमीन के चेहरे जो हैं उनको उल्टा पलटा जाएगा। और ये कौन उलट पलट रहे होंगे? ये फरिश्ते उलट पलट रहे होंगे। यौमा तुकल्लबु वजूहुम, वजहुन वाहिद है, वजू चेहरे को कहते हैं, चेहरों को जमा है। और यहाँ पे उन लोगों के चेहरों का जिक्र किया जा रहा है जो इनकार करते हुए चेहरों को मोड़ते हुए चले जाते थे, जो अपने पहलू बदल लेते थे। तो अब उनके चेहरे आग पर उलट पलट किए जाएंगे। अल्लाहुम्मा ला तजलना मिनहुम, या अल्लाह तू हमें उन लोगों में शामिल ना करना। यकूलूना, उस वक्त वो कहेंगे, या लैतना अतान अल्लाह व अतान रसूला, उस वक्त कहेंगे काश हमने अल्लाह और रसूल की अतात की होती। तो उस वक्त जो है वो बिलक बिलक रोएंगे, हसरत के मारे कहेंगे, काश हमने दुनिया में अल्लाह और रसूल की बात मानी होती तो आज हमारा ये हाल ना होता। तो अल्लाह की अतात से मुराद जो है वो अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक चलना, कुरान के मुताबिक चलना। रसूल की अतात से मुराद के रसूल को अपना लीडर और रहनुमा बनाना। आप सूरत अहज़ाब में पढ़ चुकी है ना कि रसूल जो है वो तुम्हारे लिए कौन है? लीडर है, रहनुमा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा है वो तुम्हारे लिए जो है वो बेहतरीन उसवा है, बेहतरीन नमूना है। तो मुनाफिकों की, काफिरों की परवाह किए बगैर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा है उसके मुताबिक हमें अपनी जिंदगी जो है वो गुजारनी चाहिए। लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये आयत नंबर 21 में आपने पढ़ा था। तो कौन रसूल अल्लाह को अपना लीडर और रहनुमा बनाएगा? लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर वज़कर अल्लाह कसीरा। अब यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि कहेंगे काश हमने अल्लाह की अतात की होती और अल्लाह के रसूल को जो है वो उनकी अतात की होती। फकालू रब्बना, और उस वक्त वो कहेंगे ए हमारे रब, इन्ना अपाना सादतना वकुबराना फअदल्लूना सबीला, कि ए हमारे रब बेशक हमने अताना अतात की, सादतना, सादतना इसका रूट है सीन वो दाल, और ये सैयद, ये लफ्ज शोहर के लिए भी इस्तेमाल होता है और सरदार के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो उस वक्त ये लोग कहेंगे कि हमने अपने बड़ों की, सरदारों की अतात की, बकुबरान और अपने बड़ों की, अपने लीडरों की अतात की। फादल्लू न सबीला, बस ए हमारे रब, फादल्लू, अदल्लू जो है इसके मानी है कि इन्होंने गुमराह किया ना हमको, असबीला सिराते मुस्तकीम से, इन्होंने हमें राह रास्त से गुमराह कर दिया। तो उस दिन ये लोग क्या करेंगे? अपने आप को जो है वो बरी जिम्मा करने के लिए एक्सक्यूज करेंगे अपने लीडरों पर, अपने रहनुमाओं पर, अपने दोस्तों पर, या जिसको भी उन्होंने दुनिया में फॉलो किया होगा, कहेंगे कि अल्लाह ताला इन्होंने हमें सिराते मुस्तकीम से गुमराह किया था। रब्बना ए हमारे रब, आते हिम दे इनको, दे फैने दुगना, मिनल अजाबी अजाब में से, ए रब इनको दोहरा अजाब दे। वल अनहुम लानन कबीरा, और इन पर सख्त लानत कर। पर ये मजमून कुरान मजीद में आप बहुत दफा पहले भी पढ़ चुकी हैं कि उस दिन इंसान दूसरों पर उजर डालकर अपने आप को बचाना चाहेगा, वो बड़ा ही सख्त वक्त होगा। और लोग कहेंगे कि ये कुफर और शिर्क में हमें लीड कर रहे थे, इस फैशन में इन्होंने हमें लीड किया था, इन्होंने इस बुराई की दलदल में हमें फेंका था लाकर, बस इन्हें दुगना अजाब दे और इन पर बड़ी लानत भेज, शदीद तरीन रुस्वा इन्हें कर। तो ये जो आयत है, ये जो अंधी धुंध लोग तकलीद करते हैं, पीयर प्रेशर का शिकार होते हैं, कभी दोस्तों का, कभी रिश्तेदारों का, कभी जमाने की रस्मों रवाज का, तो ये उनके लिए एक बड़ी इबरत की बात है कि कुरानो सुन्नत से लोग कुरान सुन्नत को पढ़ते हैं लेकिन कहना मानते हैं किसका? दोस्तों का। तकलीद किसकी करते हैं? अबाउ अजदाद की, रस्मों की। तो ये क्या है? ये गुमराही है और उनका अंजाम बताया जा रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि या युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो। तो ईमान लाने वाले कौन है? जो नाम के मुसलमान नहीं है बल्कि ईमान लाने के बाद अब इन्हें जो है वो सही मुसलमान बनने की ताकीद की जा रही है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तकूनू कल्लज़ीना अज़ऊ मूसा, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अजियतें दी थी। फबराहुल्लाहु मिम्मा कालू, फिर अल्लाह ताला ने उनकी बरात की। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फबराहु, फिर अल्लाह ने बेऐब साबित किया मूसा को। हु की जमीर मूसा अलैहिस्सलाम की आई है। मिम्मा कालू, जो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा था। वकाना इंदल्लाही वजीहा, और वो अल्लाह के नजदीक वजाहत वाला था, बड़ी ही जो है वो आबरू वाला था, और वो अल्लाह के नजदीक बड़ा ही बाइज्जत था। तो मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम यहूदियों की तरह हरकतें ना करो जो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ की थी। मूसा अलैहिस्सलाम इनके बड़े मोहसिन थे, लेकिन कौम ने अपने मोहसिन की कदर ही ना की। तो ऐ मुसलमानों, तुम अपने रसूल की कदर करो, उनकी अतात करो, उनको अपना लीडर और रहनुमा जो है वो बनाओ। अच्छा, यहाँ पे मुसलमानों को किस तर्ज अमल से रोका जा रहा है, इस सिलसिले में दो तीन बातें हमारे सामने आती हैं। और इसमें एक तो ये बात है कि एक दफा का वक्त था, एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो तकसीम कर रहे थे, गनीमत के माल को तकसीम कर रहे थे। तो महफिल से कुछ लोग बाहर निकले तो एक शख्स ने कहा कि मोहम्मद ने इस तकसीम में अल्लाह और आखिरत का कुछ भी लिहाज ना रखा। तो क्या किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे अल्फाज कहे कि माल गनीमत की तकसीम में एक शख्स ने कहा कि इसमें अदल इंसाफ से काम नहीं लिया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल्फाज पता चले तो आप गजबनाक हुए, हत्ता कि आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की रहमत हो, उन्हें इससे कहीं ज्यादा अजियत पहुंचाई गई, लेकिन उन्होंने सबर किया। इसे बुखारी ने रवायत किया है। मुस्नद अहमद, तिरमिजी और अबू दाऊद की भी रवायत है। अच्छा, दूसरा वाकया ये भी आप नोट कर लें कि मूसा अलैहिस्सलाम को क्या अजियत दी गई। मुफस्सरीन कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम नहायत बाहया थे, उन्होंने अपना जिस्म कभी लोगों के सामने नंगा नहीं किया, और वो जो है वो बहुत ही पर्दा करते थे। और इस पर भी लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया, क्योंकि ये भी इमाम बुखारी की रवायत है, रावी है अबू हुरैरा रजी अल्लाह नो, कि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही शर्मीले थे, बाहया थे, अपने जिस्म का सख्त पर्दा करते। बनी इसराइल के लोग समझते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में जरूर कोई ऐब है। उनका ख्याल था कि शायद जिस्म में बर्स का दाग है, या कोई जो है वो उनके जिस्म के अंदर कोई और कमी है, आफत है, तो जिसकी वजह से वो अपने जिस्म का इतना सख्त पर्दा करते हैं। फिर क्या हुआ कि एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम तन्हाई में नहाने के लिए गए, गुसल करने गए, उन्होंने अपने कपड़े उतार कर एक पत्थर पर रख दिए। अब पत्थर जो था वो अल्लाह के हुक्म से कपड़े लेकर भाग खड़ा हुआ। पत्थर तो नहीं चलता ना, लेकिन ये जैसे पत्थर में से ऊंटनी निकल आई थी वो भी मौजजा था, ये भी मौजजा था। अब क्या हुआ कि कपड़े लेकर पत्थर ने भागना शुरू किया। मूसा अलैहिस्सलाम नहाकर जब मतलब कपड़े लेने गए तो कपड़े नहीं थे, और पत्थर कपड़े लेके भाग रहे, और आप पीछे दौड़ते गए, यहां तक के बनी इसराइल की एक जमात के पास पहुंच गए। पीछे पीछे दौड़े, बनी इसराइल की महफिल में पहुंचे, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने नंगा देखा, और लोगों ने देखा कि बर्स की कोई बीमारी नहीं है और ना ही कोई जिस्मानी ऐब है, तो उनके सारे शुबहात दूर हो गए और उन्हें पता चल गया कि मूसा अलैहिस्सलाम तो निहायत हसीन, जमील, हर किस्म के दाग और ऐब से पाक थे। तो अल्लाह ताला ने मौजजाना तौर पर पत्थर के जरिए इनका, मूसा अलैहिस्सलाम पर जो इल्जाम था बनी इसराइल का, जो शुबा था, अल्लाह ताला ने उसकी बरात नाजिल की। तो जो है अब आप देखें कि कौम का हाल के पैगंबर के बारे में ऐसी बात करना, तो ये जो अजियतों की बात है इसमें, अब ये चीज भी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बड़ी अजियत की थी कि अब जो है वो कौम के लोगों का इस तरह की बातें करना, और फिर अल्लाह ताला ने मौजजाना तौर पर उनकी बरात नाजिल की कि वो जो ऐब है उसको दूर कर दिया जाए। अब आप देखें कि जैसे मूसा अलैहि सलाम को उनकी कौम ने सताया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने कैसे सताया? मुनाफिक थे ज़ैद बिन हारसा और ज़ैनब रजी अल्लाह ना की जो शादी हुई, इस पर बातें कर रहे थे तलाक के ऊपर, जो ज़ैद रजी अल्लाह ना से तलाक हुई थी उनकी। फिर जो है वो यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना और ऐसी बातें करना कि जिससे आपको जो थी वो तकलीफ होती थी। तो यहाँ पर जो है अल्लाह ताला ने इन्हीं वाकयात को सामने रखकर ये बात कही है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम उन लोगों की तरह ना बन जाओ जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अजियतें दी थी, फिर अल्लाह ने उनकी बनाई हुई बातों से उसकी बरात नाजिल कर दी। मिम्मा कालू, जो कुछ उन्होंने कहा था, और मूसा अलैहिस्सलाम वकाना इंदल्लाहि वजीहा, अल्लाह के नजदीक बाइज्जत थे। तो वजीहा के क्या मानी है? वो जीम हा वजहुन, चेहरे को कहते हैं। मुफस्सरीन ने एक तर्जमा किया है कि वो अल्लाह ताला के नजदीक बाइज्जत थे, और इसके एक मानी ये हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से जो कुछ मांगते इनकी सिफारिश कबूल की जाती थी, क्योंकि इनका इनके रब के नजदीक बंदगी की वजह से बड़ा मकाम था, बड़ा मर्तबा था। तो वो जो कहते अल्लाह ताला से अपनी कौम के लिए बात करते कि कौम को ये दे दीजिए ये दे दीजिए, तो अल्लाह अपने फजल से अपनी अनायत से इनकी वो बात जो थी उसको पूरा कर देता था। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वकाना इंदल्लाहि वजीहा, कि मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह के यहाँ बड़ा मकाम था। तो इसके क्या मानी है कि बनी इसराइल ने सताया लेकिन अल्लाह के नजदीक मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा ही मकाम था। तो इसी तरह अगर जो है वो लोग सता रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन अल्लाह के नजदीक पैगंबरों का बड़ा ऊंचा मकाम होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'इल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़ान अज़ीमा। आयत नंबर 70 और 71, ये दो आयात जो हैं ये खुतबा निकाह में पढ़ी जाती हैं। और खुतबा निकाह में जो आयात पढ़ी जाती हैं, इसमें सूरत आले इमरान की आयत है, और आप वो आयत पहले पढ़ चुकी हैं, और उस आयत में भी अल्लाह ताला ने तकवा के बारे में कहा है, डरने के बारे में। और आयत नंबर है 102, सूरत आले इमरान की आयत नंबर 102, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फिर इसके बाद जो है दूसरी जो आयत खुतबाए निकाह में पढ़ी जाती है, अगर आपको याद हो, सूरत निसा की आयत है, आयत नंबर 1, उसमें भी तकवा का जिक्र है। और नंबर 3 जो पढ़ी जाती है, ये सूरत अल अहज़ाब की आयात है, आयत नंबर 70 और 71, इसमें भी तकवा का जिक्र है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूलु कौलन सदीदा, और ठीक बात किया करो। सदीद, सदीद सीन दाल दाल, ये दीवार को भी कहते हैं, और सदीद का लफ्ज जो है ये सीधे के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे सदे बाप करना, सीधी सीधी बात करना, ठीक ठीक बात करना, कौलन सदीदा, ठीक ठीक बात करो। तो ऐ लोगों जो ईमान लाए हो कि तुम जब बात करो तो ठीक बात करो। तो अब आप देखें कि यहाँ पे तकवा के लिए कहा जा रहा है और तकवा का तरीका बताया जा रहा है, और तकवा का तरीका क्या बताया जा रहा है कि जबान जो है उसकी हिफाजत की जाए। जबान की इसलाह दरअसल तमाम आमाल की इसलाह है। तो ईमान लाने वाले, उनको बताया जा रहा है कि ईमान का तकाजा ये है कि जब अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं, तो अब आप क्या कीजिए, समेना व अताना कहें। तो आप भी सूरत पूरी अहज़ाब पढ़ी है, तो अब पढ़ने के बाद अब हमें क्या कहना चाहिए, समेना व अताना, हमें अपना अल्लाह के अहकामात का इतराफ करना चाहिए, इकरार करना चाहिए, ताकि हमारे लिए हदायत की राहें खुलने लगे। यहूदियों की तरह, बनी इसराइल की तरह ये नहीं कहना चाहिए समेना व असईना, तो वो ऐसे कहते थे। तो हमें क्या कहना है, समेना व अपाना, वकूलू कौलन सदीदा। तो ये है तरीका कि ठीक ठीक बात किया करो, ठीक ठीक अमल किया करो। और फिर इसके बाद जो है दरअसल यहाँ पर यही बात हमें कही जा रही है कि अल्लाह के अजाब से डरना, यानी तकवा क्या है, पहली चीज थी ना तकवा, इत्तकुल्लाह, पहली चीज। तो तकवा क्या है कि अल्लाह के अजाब से डरना, फराइज को अदा करना, हराम चीजों से बचना। और आप देखें कि अजाब में क्या कुछ कहा है अल्लाह ताला ने, आप सोचें, अपना जायजा लें। नंबर दो, हर हाल में हक और सच बात कहना, हर हाल में जबान का सही इस्तेमाल करना। अच्छा, फिर आयत नंबर 71 में अल्लाह ताला ने कौले सदीद जो है और तकवा जो है उसका फल बताया है। उसका फल अल्लाह ताला क्या देंगे? नंबर वन, युस्लिह लकुम आमालकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देंगे, यानी कौल और अमल के अंदर जो कंट्राडिक्शन है, तजाद है, अल्लाह उसको दूर कर देंगे। तो ये इसका फिर नतीजा निकलेगा। नंबर दो, व यग्फिर लकुम, और अल्लाह तुम्हें बख्श देगा, जुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को, ये इसका दूसरा फल मिलेगा। यानी फिर सब चीजें ठीक हो जाएंगी, कदम सही रास्ते पे चलने लगेंगे, तुम्हारा हाल ठीक हो जाएगा, तुम्हारा ईमान मजबूत होगा, तुम्हारे अमल अच्छे हो जाएंगे, तुम नफ्स और शैतान के चालों से निकलने लगोगे, तुम सिराते मुस्तकीम पर चलने लगोगे। फमन युतिअल्लाह व रसूलहू फकद फाज़ फौज़न अज़ीमा, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा, उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। तो असल जो गोल है, यानी सारा पढ़ने के बाद, सारा समझने के बाद, अब अपना गोल, अपना टारगेट तय करना चाहिए, और वो है नंबर एक तकवा, नंबर दो अपना समीना व अताना कहना, अमल करना, और उसके फिर फल हैं कि अमाल अच्छे होंगे, सिराते मुस्तकीम पर चलने लगेंगे, गुनाह माफ हो जाएंगे, और फिर अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करेगा, उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, छोटी नहीं, फाजा फौजन अजीमा, बड़ी कामयाबी। फिर इसकी जो है वो आयत नंबर 72 है कि इन्ना अरदनल अमानता अल समावाती वल अर्दिल, इन्ना अरदनल अमानता अल समावाती वल अर्दी वल जिबाली फअबैना अन यहमिलनाहा व अशफकना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहू काना जलूमन जहूला। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने पेश किया, अर्ज किया, हमने पेश किया, अरदना, हमने दिया, पेश किया, अल अमानता, इमानत को। इमानत के माने क्या है? कौन सी इमानत है जिसके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने जो है उसको पेश किया? तो मुफस्सरीन कहते हैं कि इमानत से मुराद है दीन, अहकाम शरीयत। एक राय तो ये है कि अहकाम शरीयत, फराइज और वाजिबात मुराद हैं, और दूसरी राय है कि इससे मुराद है दीन, दीने मतीन, यानी दीन पर अमल करना ना, वो तो बात वही होगी। और एक राय ये भी है कि इससे मुराद जो है वो खिलाफत है, खिलाफत यानी खिलाफत अर्दी, इसके मानी ये हैं। तो अल्लाह ताला ने ये जो अताअत की जिम्मेदारी है, बंदगी की, फराइज को पूरा करने की, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है उसको पेश किया, किस पर? नंबर वन असमावाती, आसमानों पर, नंबर दो जमीन पर, नंबर तीन पहाड़ों पर। अब देखें आसमान, जमीन और पहाड़ कितने अजीमुल जुस्सा हैं, कितने बड़े बड़े हैं, तो इनके सामने अल्लाह ताला ने पेश किया। फा अबैना, अबा का मतलब होता है ना इनकार करना, तो फा अबैना, बस इन्होंने इनकार कर दिया, यह मिलना कि वो इसको उठाएं, तो इसको उठाने के लिए वो तैयार ही ना हुए। क्या हाल उनका हुआ? वशफक ना मिनहा, वो इससे डर गए। तो उन्होंने इसको उठाने की बजाय जो है वो कांपने लगे, वो डर गए कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम इसको नहीं पूरा कर सकते। तो जमीन, आसमान और पहाड़ अपनी सारी अजमत के बावजूद इस इमानत को उठाने की ताकत नहीं रखते थे। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि ये तो बोल नहीं सकते, ये तो गूंगे बहरे बेजान हैं, तो फिर कैसे अल्लाह ने पेश किया, कैसे वो डर गए, कैसे उन्होंने इनकार किया? तो दरअसल जो है ये बात एक इस्तियारा है कि यहाँ पे दरअसल अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने जो है जब उनके सामने रखा तो उनका ये हाल हो गया कि हम जो है इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठा नहीं सकते। तो जरूरी नहीं कि उन्होंने बाज़बाने हाल ये बात कही हो, यानी ज़बाने काल, बल्कि ये एक मिसाल है कि उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिहाज से कहा कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम इसको जो है वो अदा कर सकें, तो इंसान ने इसको उठा लिया। अच्छा, ये नहीं है कि इंसान ने उठाया तो इस वजह से इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, कि इंसान बड़ा जालिम है और बड़ा जाहिल है। यहाँ पे ज़लूमन जहूला ये मुबालगे का सीगा इस्तेमाल हुआ है। तो दरअसल ज़लूमन जहूला जो है इसके मानी ये हैं कि इंसान ने उठाया तो इसलिए था कि उसके अंदर इसकी इसको पूरा करने की सलाहियत मौजूद थी, लेकिन फिर इंसान ने क्या किया कि इसको निभाया नहीं। तो जो निभाते हैं वो क्या करते हैं कि वो इसका हक अदा करते हैं, और जो निभाते नहीं है तो वो लोग हैं ज़लूमन जहूला। तो ज़लूमन जहूला जो है ये सबको नहीं कहा गया, बल्कि ये वो लोग हैं जो इस्लाम और तकवा की रविश पर नहीं चलते, अपनी जिम्मेदारियों का सही एहसास नहीं करते, और उनको भूल जाता है कि हमें जो है इतना बुलंद मनसब मिला है जमीन पर खिलाफत का। जमीन पर जो है वो अल्लाह ताला ने इंसान को ये मनसब दिया है कि नेकी और बदी की पहचान के बाद वो लोगों को फिर खुद भी वो अमल करेंगे और लोगों को भी जो है वो बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इसके मानी दरअसल फिर अल्लाह की अतात के हैं। तो जिसने अतात की तो उसने इस अमानत का हक अदा किया, इस्लाम लाए, ईमान और तकवा की रविश पर चले तो हक अदा कर दिया, और जिसने नहीं किया तो इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, तो वो जो है वो जालिम भी है और फिर नाफरमान भी है। और आखिरी आयत है लियुअज़्ज़िब अल्लाहुल मुनाफिकीना वल मुनाफिकाती वल मुश्रिकीना वल मुश्रिकाती व यतूब अल्लाहु अलल मुमिनीना वल मुमिनात व कान अल्लाहु गफूर गफूर रहीमा व कान अल्लाहु गफूर रहीमा। तो अब क्या है, यहाँ पे लाम आया है और लाम लामे इल्लत है कि ताकि अल्लाह ताला अजाब दे, किसे अजाब दे, मुनाफिक मर्दों को और मुनाफिक औरतों को, मुशरिक मर्दों को और मुशरिक औरतों को। तो अब यहाँ पे जो है वो कहा जा रहा है कि वो लोग जो कि इस इमानत को पूरा नहीं करेंगे फिर अल्लाह क्या करेगा, कि अल्लाह ताला जो है वो निफाक करने वालों को भी और शिर्क करने वालों को भी उनके अमलों के नतीजे में जो है वो सजा देगा, उन्हें जो है वो अजाब देगा। तो यहाँ पर जो है अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो अल्लाह के अहकाम को जाया करेंगे, अतात अल्लाह की नहीं करेंगे, तो वो बन जाएंगे मुनाफिक और मुशरिक, तो अल्लाह ताला फिर इन्हें सजा देगा, उनके अकीदे के मुताबिक अल्लाह ताला उनको रिजल्ट देगा। यतूब अल्लाहु अलल मुमिनीना वल मुमिनात, और अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिन मर्दों और औरतों की तौबा कबूल कर ले। फकान अल्लाहु गफूर रहीमा, और अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहीम है। तो मोमिन मर्द और मोमिन औरतें जो मुखालफत के बावजूद जो खिलाफत अर्दी है उसको पूरा करेंगे, अल्लाह की अतात इख्तियार करेंगे, समीना व अताना पे चलेंगे, तो फिर अल्लाह ताला जो है उनकी तौबा कबूल करेंगे और अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला है। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, यानी जो गलतियां हो जाए तो अल्लाह उस पर माफ करने वाला है। तो याद रखिए इमानत के मानी बड़े वुस्सत के हैं, खिलाफत अर्जी भी मुराद है, फराइज शरिया भी हैं, हिफाजत इफ्फत भी है, इमानत भी है, और नमाज ज़कात रोजा हज भी। और जमहूर मुफस्सरीन कहते हैं कि दीन के तमाम वज़ाइफ और अमाल इससे मुराद हैं जो अल्लाह ताला चाहते हैं। और फिर असल बात क्या है कि इमानत जो है उसमें खयानत नहीं करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने वाला बनाए, क्योंकि जो है वो जबरदस्ती तो ऐसा नहीं हो सकता कि जबरदस्ती जो है वो कहा जाए कि कोई अमल करे, बल्कि ये तो अपने दिल की खुशी और इरादे के साथ अमल करने का नाम है। और सब पे जिस बार ने गिरानी की उसको ये नातवां उठा लाया। तो असल बात यह है कि ये नाजुक कंधों पर जो अब हमारे पास खिलाफत की जिम्मेदारी है, खुद भी अमल करना है और लोगों को भी इसकी दावत देनी है, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اور اچھے لوگوں میں شامل کر لے اور ہم سب سے راضی ہو جائے. اور اسی وجہ سے انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے کہ ساروں میں سے سب سے بہترین ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے ہم سب سے راضی ہو اور ہم سے اپنے دین کی وہ خدمت لے لے جو کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, اور ان بہترین لوگوں میں شامل کر لے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. تو یہ تھی ہماری سورت احزاب, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فوزن عظیمہ عطا کر دے, کیونکہ ہم بحثیت انسان کے مسلمان کے موجودہ دنیا میں اللہ کی ایمانت کے امین ہیں, اللہ کی مرضی کے ہم پابند ہیں, اور اللہ حاکم ہے اور ساری چیزیں محکوم ہیں, اور ہم بھی اللہ کے محکوم بندے ہمیں بننا چاہیے, اور اللہ کے پیغام کو اللہ کی زمین پر پھیلانا چاہیے, اپنے جسم پر بھی, پھر لوگوں کے سامنے بھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمانت کو آدم کے سامنے پیش کیا تو آدم نے پوچھا کہ ایمانت کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اچھا کرو گے تو تمہیں اس کا بدلہ ملے گا, اگر برا کرو گے تو تم کو اس کی سزا دی جائے گی. تو یہ معنی ابن کثیر میں لکھے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.